دیکھیں کہ بیسٹ کمپینینشپ جو ہوتی ہے نا، یہ ہارمنی ہے، تعلق، ریلیشن شپ. مثال ہے کہ آپ آج یہاں اس کورس کو کرنے کے لیے آئے، میں کرانے کے لیے آئی. ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، شوہر ہوں گے، ساس سسر ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے فرق ہے. اسی طرح کی کچھ چیزیں میرے ساتھ بھی ہوں گی. اب ایک کیا ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، مجھے بلائے نہ. ایک صورتحال یہ کہ ہم گھر میں شور مچا دیں، میں نے کھانا بھی نہیں پکانا ان چار دنوں، مجھ سے کوئی پوچھے نہ، میں اویلیبل ہوں. بلکہ میں نے یہ اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے سیکھا، ہم نے جب یہاں پہلا سویل الجنا کورس شروع کیا تھا ناروے میں، مجھے اچھی طرح آج بھی وہ سسٹر یاد ہے، تو وہ پریپ سیمسٹر سے آنا شروع ہو گئی تھی، اور ہم یہ حالات تھے کہ وہ اسکول کھلنے سے پہلے آئی ہوتی تھی اور بیٹھتی تھی، پورا وقت سن کے جاتی تھی. تو پھر اس کے ہم نے تقریباً ایک مہینے کے بعد ریگولر کلاسز شروع کی. تو ایک دن کلاس میں شیئرنگ میں کہتی ہیں، میں نے اپنے گھر والوں کو کہہ دی، ایسے ہاتھوں سے بہت اشارے کرتی تھی، کوئی کھانا نہیں پکنا 1.5 سال، کوئی میرے سے امید نہ. اب میں آپ کو اس طرح تو بتا ہی نہیں سکتی، جس حسین انداز میں انہوں نے بتایا، میں اپنے دل پہ ہاتھوں کا اللہ رحم کرے، ہائے خیر ہو سی. یہ ان کے گھر والے تو پتہ نہیں آ کے ہمارے خلاف رپورٹ ہی درج کرا دیں گے کہ انہوں نے ہماری عورتوں کو کیا کر دیا. اب آپ بتائیے کہ آپ کو اگر ہم ہفتے میں 4 دن 4 گھنٹے کے لیے بلاتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گھر والوں کو وارننگز دے دیں اور دھمکیاں دے دیں؟ نہیں، آپ ان کو بھی انہیں کاموں میں لگائیں. یقین کیجئے کہ اگر آپ بھولے بن جائیں نا، اور آپ کہہ دیں مجھے کچھ نہیں آتا کمپیوٹر سے، یہ بچوں تم نہیں کرنا ہے، تم میرے لیے یہ کرو گے. اور بعض دفعہ تو اتنا بھی ہو سکتا ہے آپ انہیں کہ میرے لیے نوٹس لو. میں کلاس میں سنتی ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن میں نوٹس نہیں لیتی. بیٹا یہ پکڑو اس کی آڈیو، تم بیٹھ کے نا اس کے نوٹس لے دو کمپیوٹر پہ، انگلش میں لے دو، نوش میں لے دو، اردو میں لے دو. عقل مند مائیں جو ہے نا، بلکہ بیویاں بھی، وہ گھر والوں کو اپنے گرد ہی الجھائے رکھتی ہیں. جتنے آپ مصروف ہیں نا، آپ کے گھر والے بھی مصروف ہو جائیں گے. طریقہ کیا ہے کہ ایکٹیویٹی کی بیس پہ، اور ان کو فیل ہو کہ اچھا امی کو اس چیز کی ضرورت ہے، لو میں کرتا ہوں. بلکہ سارے بچے آپس میں جھگڑیں گے، یہ میں نہیں کرنا. بچوں پہ ناشتے کا کام لگا دیں، آج صبح ٹیبل پہ تم نے چائے کے برتن رکھنے ہیں، کل تم نے رکھنے ہیں، کچھ ایسے. یعنی ان کو کچھ انوالو کریں، ان کو لگے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مینا بازار ہو رہا ہے، ہمیں اس کا فلائر چاہیے. بیٹا تم فلائر بناؤ گے؟ چلو اس کی سکلز لیں. آپ دیکھیں آج کے دور میں میں اور آپ، میرے اپنے پاس پڑا ہوتا ہے فون، یہ الگ بات ہے کہ میرا اس کا استعمال کیا. ہم ان چیزوں کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کہہ کر اپنے بچوں سے ان کے سارے فون اور آئی پیڈز اور آئی فون ختم کرا سکتے. نہیں، آپ ان کو اتنا کنسٹرکٹیو کر دیں کہ یہ چیزیں پڑی میں وہ صرف اور صرف ضرورت کے لیے اٹھائیں. اور ضرورت کیسی؟ اچھی. مثلاً کئی ایسے مرد ہیں وہ پورا وقت کمپیوٹر پہ رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی وہ سیکھ رہے ہیں، کبھی سکھا رہے ہیں، کبھی سرچ کر رہے ہیں، کبھی ویب سائٹس بنا رہے ہیں. بچوں کو پروجیکٹ دے دیں. جیسے اب مثال ہے کہ میں آپ سب کو دیتی ہوں، میں نے 2 سال پہلے الحمدللہ ہماری ایک ساتھی ہیں تو ان سے بات کی، جب دورہ قرآن تھا، آل انسان ہماری سیریز تھی اس سال، تو میں نے ایسی شیئر کیا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ انسان کے اندر کی باڈی جو ہے وہ ہم لوگوں کو دکھائیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی باقی کائنات کو دیکھتے ہیں تو کتنا پیار آتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی چیزوں کو نہ دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاذ میں اپنے بیٹے سے کراتی ہوں. ان کا بیٹا میڈیکل میں تھا، پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کمپیوٹرز بھی آتے ہیں. ماں نے بچے سے ڈسکشنز کی، ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ بھی تھوڑی سی ان سے بات ہوئی. بلیو می کہ جو پورا دورہ قرآن تھا ہمارا، ابھی بھی ویب سائٹ پہ، اور اس بچے کے لیے صدقہ جاری ہے نا. آج آپ بھی جا کے سننا شروع کر دیں، 30 دن آپ 30 ویڈیوز دیکھیں گے کہ ریسپریٹری سسٹم کیسے کرتا ہے کام، ڈائجسٹو سسٹم، امبرولوجی. اس بچے نے پورا مہینہ ہر دن ہمیں ایک پریزنٹیشن بنا کے دیا. اور اب میری اگلی فرمائش ہے وہ ایپس کی ہے. آج آپ کو ہوتا ہے کہ آئی فون آئی پیڈ کا رواج ہے نا، اب میری خواہش ہے کہ ہم جو کچھ سارا دن بولتے ہیں، لوگوں کو کبھی ویب سائٹس بتاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، پیل ٹاک بتاتے ہیں، اتنی چیزیں اب لوگ نہیں یاد رکھ سکتے. اور بڑی آنٹیوں کو جب ہم یہ باتیں کلاسز میں بتاتے ہیں، درسوں کے اینڈ پہ، تو وہ تو کان بند، ادھر ادھر آنا ذرا بیٹی کا نام لیں گی، ادھر آئیں ذرا، اے بادی دی گل سن. میں کہ تسی کچھ نہیں کر سکتے، تسی اپنی بیٹی نہیں کہندے رہنا تسی نہیں کر سکتے، تسی کمپیوٹر سیکھو. لیکن آپ اپنے بچوں سے کہیں، بیٹا میرا دل کرتا ہم ایک ایپ بنائیں. مثال ہے کہ اب یہ ہمارا کورس ہوا، کیا آئیڈیا، اس سارے کورس کا جو مٹیریل ہے، میٹر ہے، اس میں اور چیزیں ڈھونڈے، ان آڈیوز کو ڈالے، ایک چھوٹا سا ایپ بنا دیتے ہیں پیرنٹنگ کے نام پہ. کیا بڑی بات ہے، مشکل ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں پھر بات وہیں آئے گی. بلکہ کل رات سے آج تک جو میں نے آپ کے لیے ایک مثال سوچی، جسے میں نے سوچا تھا کہ آج کے سیشن کا آغاز کروں گی، تو میں نے کل بہت سوچا، پھر سوچا. اور یقین کریں میں یہ جو باتیں آپ کو بتاتی ہوں نا، یہ کتابوں میں سے نہیں ملتی ہیں آپ کو. آپ کوئی لیکچر سن لیں آپ کو نہیں ملیں گی، کتابوں سے نہیں ملیں گی، تفسیروں سے نہیں ملیں گی. بہت کچھ ملتا ہے، حدیثیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں، اللہ کی پسند نفس ملتی ہیں، لیکن یہ جو چیزیں نا، یہ آبزرویشنز ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کو پڑھنا ہے. تو کل رات سے آج تک جو میرے دماغ میں چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک کتاب ہے، इसका अगर आपने एक सफा भी मिस कर दिया ना पढ़ना, तो आप अपने बच्चे को नहीं समझ सकते। जैसे आप देखिए, ये बुक हमने शुरू की है ना अल्लाह के हुक्म से, तकरीबन 200 के करीब सफे हैं। अगर ये एक तरतीबवार बुक हो तो इसका एक पेज हम स्किप कर दें तो हम अगली बात नहीं समझ सकते ना। कोई भी दुनिया की भी किताब हो, हम उसका पूरा मिजाज नहीं समझेंगे। बच्चा एक किताब है, जब हमें मिलते हैं ना ये बंद होती है किताब। बाज माएं फिर एक दो बच्चों की पैदाइश के बाद अपनी आदत और अपनी प्रेगनेंसी की हैबिट से जान जाती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बेटा होने वाला, मुझे लगता है कि बेटी होगी। फिर मैंने अक्सर माओ को सुना है कि वो बातें करती हैं, ये तो जब मेरे पेट में भी था ना तब भी मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इसकी दफा मुझे गर्मी बड़ी लगती थी। सुना होगा ना, हर बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहकर उसको अपना आप दिखाता है। अगर मैं और आप क्वाइट इंटरेस्ट लें अपने बच्चों में, पढ़ें, ये आपका बच्चा एक किताब है, ये आपकी बेटी दूसरी किताब है, ये आपकी तीसरी किताब खुली है, ये चौथी खुलने वाली है, एक एक किताब को पूरे फोकस के साथ यकीन के साथ पढ़ें, फिर अपने बच्चे की पर्सनैलिटी उसकी तहें खोलें, ये मोहब्बत मानता है कि गुस्सा मानता है। कुछ लोग यकीन करें सिर्फ मोहब्बत की जुबान समझते हैं, कुछ सिर्फ गुस्सा समझते हैं, कुछ को अप्रिशिएट करना होता है क्योंकि वो बहुत दबे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ को जरा दबाना पड़ता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में चुलबुलापन होता है। अगर आप एक लाठी से सबको हांकेंगे ना, बात नहीं बनेगी। तो जो बहुत सारी टिप्स ले रहे हैं उसमें एक टिप को याद करें कि अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप चारों को कभी इकट्ठे बैठ के नसीहत ना करें। आपने 1 घंटा बैठना था ना, आओ बच्चों बैठो बातें करते हैं, ठीक है, कर ले। आमतौर पर जब नॉर्मल हालात हो, फंक्शन, पार्टीज, दावतें, वो तो करें। आमतौर पर अगर आप एक माँ होने का हक अदा करती है ना, तो आप इन 1 घंटे को 15-15 मिनट के छोटे स्लॉट्स पे रखें। ये मेरा मुन्ने के साथ टाइम है, ये मेरा गुड़िया के साथ टाइम है, ये मेरा गुड्डू के साथ टाइम है। अब उनके वही नाम रखें जो बचपन के नाम थे। तो बच्चों को भी पता है, जैसे बच्चे कहीं डॉक्टर के पास होते हैं या काउंसलिंग होती है या आप बच्चों की पेरेंटिंग मीटिंग में जाती हैं, तो बच्चे को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करते हैं ना। ये स्कूलों वाले ये कुछ तो करते हैं, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी क्या। आपके बच्चे को लगे कम अज कम हफ्ते में एक दिन, वंस अ वीक, आप अपने हर बच्चे को अनडिवाइडेड टाइम भी दें और अटेंशन दें। चल मेरा बेटा, बेटा उसके साथ जाइब में घुस जाए, चल मेरा बेटा सुना क्या करते हो, क्या सोचते हो, अच्छा लगता है कोई ऐसा। जैसे एक छोटा सा मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, एक बच्ची है, बहुत घरों के जैसे नॉर्मल दबी दुबई बच्चियां होती हैं उसी तरह की है। फिर मुझे पता चला कि उसको दाखिला जिस यूनिवर्सिटी में मिला है वहां को एजुकेशन है, जो भी है वो एक अलग इशू था। खैर जो भी हालात थे, तो मैं उसके बाद जब उस बच्ची को पहली दफा मिली तो ऐसी बातें कर रहे थे, तो मैंने एकदम स्पॉन्टेनियसली उससे पूछा, मैंने कहा कोई अच्छा नहीं लगा अभी तक तुम्हें, किसी ने अभी तक आई लव यू नहीं कहा, हालां आप क्या कह रही हैं। उसको डर जाता कि अम्मा पास बैठी और आप अम्मा के सामने ऐसी बातें कर रही हैं। नहीं खाला, टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा इन चीजों के लिए टाइम की जरूरत नहीं होती, हम भी बड़े में, हमें भी पता है क्या जज्बात होते हैं। लेकिन इस चीज से मैंने फील किया कि अगर कोई बात होती या उसके दिल की कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, तो उसने उस वक्त तो नहीं था कहना, तो बाद में उसने अकेले में कहना, खाला एक बात है, आप उस वक्त कह रही थी ना तो मैं मामा के सामने नहीं बोली, खाला ये बात है तो आप मेरी इसमें मदद करें। आप यकीन करें कि जितना आप किसी चीज की गहराई में उतरेंगे, आप उतना उसको रिजॉल्व करेंगे। और आप जो बच्चियां सुन रही हैं, मैं आपको भी ये नसीहत करूंगी कि कभी अपनी माओ से कट कट के न रहे। आप जितना मर्जी किसी से दुख सुख कर ले, लेकिन जो आपका पर्दा आपकी माँ रख सकती है वो कोई नहीं रख सकता। जो आपको अच्छा नेक मशवरा, अगर शर्त ये कि माँ भी कोई हिकमत वाली माँ हो, वही माँ ना हो कि जिसने सारी उम्र खाने ही पकाया, वो आपके अब्बा को नहीं आज तक समझी, वो आपको कहाँ समझेंगी। ऐसी भी भोली माएं होती हैं, उसका फिर ऑल्टरनेट ढूंढ लें, बहन है कोई, खाला है, कोई पुप्पो है, कोई क्लोज ऐसा शख्स हो सकता है। लेकिन ये इंसानों को पढ़ना, इंसानों की तामीर साजी, ये असल में नस्लों की तामीर साजी है। दुख की बात यह कि हर वक्त माँ बाप बच्चों की फिक्र में होते हैं, लेकिन बच्चे उनको दुश्मन समझते हैं। माँ बाप हर वक्त बच्चों पे लगा रहे हैं। देखिए ना, आप अपने किसी रिश्तेदार को सोचें, कोई आपका मामू, कोई खाला, कोई पुप्पो, सारी जिंदगी उन्होंने काम किया, कमाया, पहले घर बनाया, फिर गाड़ी ली, गाड़ी ली, घर बनाया, फोन बनाया, फिर एक पाकिस्तान में घर बनाया, कमाते 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 वो बूढ़े हो गए। इतने में उनके बच्चे जो छोटे थे वो जवान हो गए। अब वो जवान बच्चे क्या माँ बाप से खुश हैं? आप जरा ऐसे पेरेंट्स को पूछिए जिनकी सारी जिंदगी मेहनत करने में गुजर गई, ये बताओ कि बच्चों ने तुम्हें कोई टाइटल दिया? वो कहेंगे वी आर इग्नोर्ड। मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ, कहते हैं माँ को, कहते मेरी नाकामियों की जिम्मेदार तुम हो, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया। कोई बच्चा है वो कहता है कि आपने मुझे हमेशा ट्रायल बेबी समझा, आपने सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ किए, पहले मुझे नॉर्वे ले आई, कुछ साल रेफिका नहीं पकसन जाओ, चलो पकसन चलो वहां जाके पढ़ो, दो चार साल वहां ले गई, फिर मैं वहां सेट हुआ नहीं हुआ, आप लोग मुझे फिर ले आए, आपने हर चीज में मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया। और वो बच्चा ऑफेंड हो गया माँ से, और माँ रोने के सिवा कुछ और कर नहीं सकती। आज कितनी ऐसी स्प्लिट पर्सनैलिटीज हैं हमारे बच्चों में, ना दीन के ना दुनिया के। फिर उनको करार कहाँ मिलता है, स्मोकिंग में, नशे में या दोस्तों के झुरमट में। ऐसे तमाम खोए हुए बच्चों को वापस लाए, यकीन करें हमारे बच्चे अच्छे हैं, वो हमारे हैं। आज हमारी एक पूरी जनरेशन इस मुआशरे में खो चुकी है। कईयों के शौहर हैं वो सिर्फ नाम के शौहर हैं, कई मुसलमान हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, कई माँ बाप है वो सिर्फ ताल्लुक के नाम है, कई शौहर बीवी के ताल्लुक ऐसे हैं वो सिर्फ आते हैं रात को खाना खाया सो गए, सुबह कपड़े धुले धुलाए इसी के चले गए, इतना ही बहुत है, महीने के एक बार दो बार बीवी को खर्चा दिया, तू जान तेरे बच्चे जाने। ऐसे किरदार हमारे इर्द गिर्द, ये इंसान ऐसे तो नहीं पलते, नस्लें ऐसे नहीं बनती। जब तक आप किसी इंसान को जिम्मेदार शहरी नहीं बनाते, उसके साथ आप बैठ के बात नहीं करते, हर बच्चे को आप सोचिए कौन सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है उसको जहन में लाएं, बैठे कागज खोलें, कागज कलम लें, लिखे क्या वजह है, ये किस वक्त पे खुश होता है, क्या वजह थी, क्या इसको अच्छा लगता है, क्या लिखते जाएं लिखते जाएं। जब हमारा दिमाग हमारे पेपर पे आ जाता है ना, तो बिलीव भी उसके बाद इस तरह से हालात उमड़ते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते और वो सारी बातें दुरुस्त होने लगती हैं। तो इंशाल्लाह आप पढ़ते जाएं, मेरा दिल है कि हम साथ साथ स्टोरीज भी लेते जाएं, क्योंकि आप देखेंगे हर स्टोरी में से हमें एक नई चीज मिलेगी। तो वैसे तो मैं खुद बातें करूं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा और आप कहेंगे बातें करते रहें, लेकिन वो फिर मेरी बातें होंगी ना। तो आइए जरा अगली एक कहानी पढ़ते हैं, और हर कहानी पर एंड पे इंशाल्लाह जो भी रह गई बातें, कहानियां आपको कह दूंगी खुद पढ़ लें, लेकिन जो बातें रह जाएंगी वो आप लोग जरूर शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला उस सारी चीजों को सामने हम रखते हुए अपना भी जायजा लेंगे। एक छोटी सी दरख्वास्त जरूर कर दूं आप सबको, इस सारी सीरीज के दौरान, इसको सुनने के, इसको अटेंड करने के दौरान, अगर आपको अपनी कोई खामियां नजर आ रही है ना, तो खुद से इसको छुपाए ना, कन्फेस करें, अपनी रिमाइंडिंग डायरी में लिखे, हाँ यहाँ मेरा कसूर है, यहाँ मेरी वजह। जैसे मिसाल देती हूँ कि एक माँ या दादी है, वो कहती है कि बच्चे फजर पे नहीं उठते, मैं शोर मचाती हूँ, मैं चीखती हूँ, मैं कहती हूँ पढ़ो, मैं रोज सुबह उठती हूँ, मैं जलती हूँ, मैं कुड़ती हूँ, ये सोए रहते हैं, ये अपने वक्त पे फिर उठते हैं, अपनी मर्जियों से उठते हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई लंबा सा लेक्चर दो कि मैं इन बच्चों को सुनाऊं या दूं। तो मैंने उनको इसका यही जवाब भेजा था कि देखिए जो आपने कहना था कह चुके हैं ना उनको, अब रोज सुबह उठते हैं, फिर जा रहे शुरू में प्यार से कहते होंगे, फिर गुस्से में, फिर डांट डपक, फिर लान तान पे भी बात आ जाती होगी, आज तक इसका फायदा आपको नहीं हुआ ना, तो अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलें, चेंज करें अपनी मेंटेलिटी को। आप समझ लें कि इनको पता है नमाज पढ़नी चाहिए, ये समझदार है, लेकिन सवाल यह कि ये आपकी आवाज पे क्यों नहीं उठते, तो अब आप इन सब चीजों को पीछे करें, आपने बिल्कुल नमाज के लिए नहीं कहना, आप इनसे दोस्ती करें, आप देखें कि ये दोस्तों की बात क्यों मानते हैं, आपकी क्यों नहीं मानते, आप पहले इनके अपने बीच के पर्दे हटाइए, फिर देखिए कि क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम सब सीखते हैं, ये हमारा सबका लर्निंग प्रोसेस है। मैं सोचती हूँ कि किसी को भी माँ बनने से पहले इन तमाम चीजों को सीखना फर्ज है उसके ऊपर। हम जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं और हमने ड्राइविंग सीखी भी नहीं है। ये किताब जिसने हमें हिकमतें देनी थी, जिसने हमें लोगों को पढ़ना सिखाना था, हम इनके बारे में बहुत ही केयरलेस है। और मैंने फील किया जितना हम वेस्टर्न से मुराद वेस्ट में रहने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत वेस्टर्न है, ये ना सोचें कि वहां लोग वेस्टर्नाइज नहीं है, यानी जितना दुनियावी रिच और पैसे दौलत वाले खाते पीते अच्छे घरों के लोग हैं ना, उतने उनको अपनी औलाद से गिले हैं। बल्कि आज भी जो हमारे खानदानों के लोग सीधे साधे हैं, वही दाल चावल रोटी खाने, उनकी फैमिली में जाऊं बड़ा मजा आता है, इतनी उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। आप जाके बैठेंगे, बेटियां भी आ जाएंगी थोड़ी देर में, बेटे भी आ जाएंगे, बहुएं भी आएंगी, ऐसे लगता है घर है, होम स्वीट होम। अब जरा पैसे वालों की इस दुनिया में निकले तो उधर गड़बड़ा। अब मैं सोचिए इसकी वजह क्या है, क्या पैसा वजह? नहीं, पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, इसके बगैर तो आप एक कदम नहीं चलते। मुझे फिर समझ आती है उसकी वजह ये कि चूंकि पैसा था, काम बहुत है। हर माँ का अपना प्लान है, सुबह उठना है, उसने तो तैयारी करनी है, 12 बजे तक खाने नाश्ता कर करा के मासियों को काम बताने, फिर उसने उठना है तो ज्वेलर पे चले जाने, वहां से उठना है तो उसने पार्लर में 4 घंटे लगाने हैं, वहां से उठना है तो शाम को पार्टी की तैयारी करनी, उसकी एक अपनी जिंदगी है। और बच्चे पीछे माँ को कहेंगे अम्मी आप किधर हैं, चुप करो काम करो बताओ क्या है, अच्छा चलो ड्राइवर को तुम्हें ले जाओ उधर, जाओ मैकडोनल्ड का बर्गर ले आओ। मैं अपने कानों से ऐसे लोगों की बातें सुनती रही हूँ, बहुत करीब से बहुत सारे लोगों को देखने का इत्तेफाक हुआ और मैंने जितना लोगों से सीखा उतना किताबों से नहीं सीखा, यकीन करें। माँ अपनी हर चीज की कमी पैसे से पूरी करती है और फिर वो बच्चों को बताते ना, इस वक्त अम्मी अपनी पार्टी में दोस्तों में ये कुछ कह नहीं सकती, फिर वो ऐन उस वक्त फोन करेंगे, अम्मी ये हो गया, अब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जब तक वो माँ के मुंह से कहलवा नहीं लेते जाओ बड़ी बहन से कहो कि तुम्हें ड्राइवर के साथ भेजे वो चीजें मंगा दे, तो तब तक बच्चे चैन से नहीं आते। बच्चे असल में इसमें रिवेंज ले रहे होते हैं, हम खुश हैं ये चीजें दी है लेकिन वो चीजों से खुश नहीं होते। आइए देखते हैं कि जो माएं वाकई बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करती थी वो क्या थी। हमारी अगली कहानी है अपने बेटे के खिलाफ मोमिना माँ के ईमानी जज्बात, पेज नंबर है 47। अच्छा, जिनको उर्दू नहीं आती वो इस किताब से कैसे फायदा उठाए, उर्दू समझने का जरिया बना लें। अगर आपके पास उर्दू की ये बुक हो और आप ऑडियो खोले बाद में या अभी भी सुनते हैं, आप मेरे लफ्जों को उधर ढूंढे, साउंड के साथ लोग सीखते हैं ना, यानी मेरे बोले हुए लफ्ज वहां लिखे हुए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों की नोश के जो चार छह लफ्ज सीखे हैं वो कैसे सीखे हैं, कि जब लोग बोलते हैं तो जहां मैं गुजरते हुए पढ़ती हूँ ना लिखी हुई चीज, सिक्के हाउस और ये वो, तो फिर मैं आपकी साउंड याद करती हूँ। तो मैंने देखा कि सिर्फ सुन सुन के भी बंदा बहुत सीखता है, कभी गिव अप ना करे कि हमें ये जुबान नहीं आती। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। रकीका बिन तबी सैफी रदी अल्लाह अन्हा का शुमार बड़ी मर्तबे वाली सहाबियात रसूल में होता है। ये वही सालेह खातून है जिन्हें किसी जरिए से ये मालूम हुआ कि कुफारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जैसा नापाक मंसूबा तश्कील दे चुके हैं। चुनाचे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल इस वक्त इत्तला देकर कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन ने आपके कत्ल का अज़्म समीम कर लिया है और इस सिलसिले में वो आप पर शब खून मारने का, शब खून कहते हैं रात को हमला करना, इस सिलसिले में वो आप पर शब खून मारने का प्रोग्राम भी तरतीब दे चुके हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिन तौर पर अपनी हिफाजत का सामान फरमा लीजिए। चुनाचे नबी अकरम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से रातों रात मक्का से मदीना तैयबा को हिजरत फरमा गए। ये खातून जब मुशर्रफ व इस्लाम हुई तब इनका बेटा महरमा या महरमा तब इनका बेटा महरमा अभी हालत कुफर ही पर कायम था। बेटा होने की बिना पर मोमिन माँ ने काफिर बेटे की इस रविश को हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं किया बल्कि माँ की ममता पर हमेशा ईमानी जज्बात गालिब रहे और अकीका रदी अल्लाह अन्हा ने कुफर इस्लाम की कश्मकश में अपने बेटे महरमा के साथ इंतहाई सख्त रविश रवा रखी, यानी उसके साथ सख्त एटीट्यूड किया, सख्ती की। अलबत्ता साथ साथ अपने बेटे को कुफर छोड़कर इस्लाम लाने की मुसलसल तरगीब भी देती रही। बिलाखिर माँ की मुसलसल दावतों तबलीग की कोशिशें रंग लाती हैं और नतीजतन बेटा माँ का कहना मानकर ईमान ले आता है। सहाबियात रदी अल्लाहु अन्हुन्ना के ईमान का यही वो मुकाम है जिससे इस्लाम कुफर और शिर्क के मराकिज तक फैलता चला गया। अपने हों या पराए उन्होंने हर जगह दीनी गैरत का मुजाहरा किया। अपने अजीज तरीन और करीबी रिश्तेदारों से इनके कुफर की बिना पर ला तल्लकी इख्तियार किए रखी और अपने अकीदा और दीन पर आँच नहीं आने दी रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तो आप देखिए कि इससे हमें क्या पता चलता है। आप देखिए कि एक औरत एक नबी की जान बचाने का जरिया बन रही है। पहली बात इससे ये पता चलती है कि औरतों का भी इस दीन इस्लाम की तारीख बनने में बड़ा रंग है। इस्लाम की पहली गवाह एक औरत थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह ताला ने वही नबी के सीने से जब उसकी जुबान पर जारी की तो उसको लेने वाली एक औरत थी। औरत का इतना आला मुकाम है। फिर दूसरी बात है कि अगर औरतें इस काम में जिसमें अल्लाह ताला उनको चुने डाल दे तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं महसूस करना चाहिए बल्कि एक्शन लिया। मिसाल है कि आज के दौर की कोई औरत होती और ऐसे हालात होते कि लीडर के कत्ल का इरादा कर दिया गया, वो सबको बता देती, नबी को न बताती। अमूमन हम बात को इधर उधर फैला देते हैं, तो यहां से अमल की बात नोट कीजिए कि अगर आपको कभी कोई बात ऐसी मिले कि किसी को इससे नुकसान हो रहा है, कोई किसी के खिलाफ साजिश है, डायरेक्ट उस बंदे तक बात पहुंचाए। हम गॉसिप करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, इधर से उधर अफवाहें फैला के बात को फैला देते हैं, फायदा नहीं होता। फिर उसके बाद आप देखिए कि उसके मशवरे को अल्लाह के नबी ने माना। अब ये बात आपने आमतौर पर नहीं पढ़ी होगी क्योंकि ये औरत गुमनाम खातून है, कोई इनकी और इतनी ज्यादा शोहरत नहीं है, लेकिन अल्लाह जिससे ये काम लेना चाहे। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब अल्लाह के नबी वहां से खैर से निकल गए तो इस वक्त भी इसका बेटा कुफर पे था। आप इमेजिन करें, माँ के दिल में इस्लाम की नबी की इतनी मोहब्बत है कि नबी को वहां से निकलने इशारा दिया लेकिन अभी तक अपने बेटे को दीन नहीं दे सकी। हर चीज का एक वक्त होता है लेकिन कोशिश جاری رکھی. یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ مومن ماں نے کافر بیٹے کی اس روش کو ہنسی خوشی برداشت نہیں کیا, خوشی سے برداشت نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر برداشت کرتی تو کیا ہوتا, کمپرومائزنگ ہوتی. آپ اس میں عمل کی بات لکھیں. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں, وقتی طور پہ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے اور بعد میں بھول جاتے ہیں, ختم. مثال ہے, آپ نے بچے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا, آؤ دیکھا نہ تو دیکھا, اسی وقت اس پہ چیخ اٹھے, موقع بے موقع تبلیغ کی اور بعد میں بچہ بھی غصے میں چلا گیا, جا کے کمرے میں سو گیا, ادھر ہو گیا ہو گیا, بعد میں ہم ذکر ہی نہیں کرتے. اچھی مائیں کون ہوتی ہیں؟ جو بچوں کے اندر جب کوئی خرابی دیکھیں, موقع دیکھیں کہ اس وقت کہیں جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام تو نہیں ہو جائے گا, پی جائیں, برداشت کریں, پھر بعد میں بات کریں. جیسے ایک ماں کا ایکسپیرینس میں نے پہلے بھی کہیں شیئر کیا تھا, کہتی کہ بچہ چھوٹا تھا, 3-4 سال کا, میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے. تو ماں نے کہا کہ آئس کریم کیسے کھانی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھا. ایک دم ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو ایک دم بچے کو ذرا کانشیس ہوا نا, تو ہاتھ پیچھے کر میرے ہیں, میرے ہیں, میرے ہیں نا. ماں کو سمجھ آ گئی کہ بچہ ہے, اس نے یا تو کسی جگہ سے اٹھائے ہیں یا کیا ہے. تو اب ایک وقت تھا تو یہ تھا کہ وہ کہتی کہ تم چور ہو, کس کے پیسے ہیں, اسے چھینتی, بھاگ جاؤ. لیکن کہہ رہی بچہ مسلسل ضد کر رہا تھا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے آئس کریم کھانی ہے. کہتی میں خاموش رہی, میں نے اس وقت اس کی بات کو زیادہ طول نہیں دیا, میں نے جو بھی پاس اسے کہا جاؤ اس کو آئس کریم لا دو. وہ گئے بچے کو آئس کریم کھلا, جو بھی ہوا. شام کو جب بچہ سونے کے قریب تھا نا, جب ماں کی ضرورت ہوتی ہے, تو کہتی ہے کہ پھر میں اس کے پاس لیٹی. تو میں نے کہا بیٹا یہ پیسے کہاں سے لیے تھے؟ تو بچے نے صاف بتا دیا کہ میں نے فلاں جگہ سے, کسی کی الماری میں سے, اپنے گھر میں سے, آپ کو کسی کے لیے. اب پھر ماں کہتی ہے کہ یہ وقت میرا اس کی تبلیغ کا تھا. بیٹا کسی کے پیسے تو نہیں لیتے, یہ تو چوری ہوتی ہے, اگر آپ کے کوئی لے لے. کہتی میں یہ باتیں کر رہی تھی نا, تو مجھے معصوم بچہ تھا, اس کو سمجھ آ رہی تھی. اتنے سکون سے وہ یہ میری باتیں کرتے کرتے, جیسے میں اسے کر رہی تھی نا, تو وہ سو گیا. تو وہی نوٹ جس کو وہ صبح سے لے کے ہاتھ میں پھر رہا تھا نا, تو وہ نوٹ اس کی مٹھی کھلی اور اس میں سے گر کے تو نیچے گر گیا. اگر وہ اس وقت تبلیغ کرتی جب بچہ آئس کریم کی محبت میں چور تھا, تو یہ تبلیغ بے معنی ہوتی. بعض دفعہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنی پڑتی ہے, پھر ہمارے بچوں کو بھی صبر اور برداشت آتی ہے. جب بچے ماؤں کو بے صبرہ دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں صبر کرو, بعض دفعہ تو چیخ رہتے ہیں آہستہ بولو. اب میں اونچی بول کے دکھاؤں جیسے ہم بولتے ہیں, اور کہہ کیا رہے ہوتے ہیں آہستہ بولو, بولے گا کوئی؟ ہاں میں ایسے ہی آہستہ بولوں جیسے آپ آہستہ بول رہی ہیں, شاؤٹ نہیں کرو جیسے میں کر رہی ہوں, یہ انداز ٹھیک نہیں ہوتا. تو وقت کے ساتھ کوشش کرتے رہے, دل میں گرج رکھے. بچوں کو سکھانا ہے نا, اس کا بیسٹ تھنگ ہے سارا دن ان کو آبزرو کرے. بچے کیا بڑے, سب جن کو آپ آبزرو کرے, دیکھتے رہے, کرو غلطیاں, یہ بھی کرو, بس لکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں, اچھا خاموش رہیں. اب یہ کہ غلطی کر کڑک جا کے بولے, لوگ کتنے ججمنٹل ہیں, کتنی تنقید کرتے ہیں, کتنی غصے والی ہیں یہ. اور ایک یہ کہ کر لو, پھر شام کو بیٹھو سارے دن کے کیا کیا, پھر ایک یا یہ کیا تھا. اب بعد میں آپ کریں گے تو وہ چیز ان کی اصلاح اور ان کی رپورٹنگ کی ہوگی, اور اگر بیچ میں کریں گے تو وہ تنقید کی ہوگی.